हमने पिछले दिनों मरकुस के सुसमाचार को शुरू करा, पहले 11 पद को आपके साथ बांटा था, और जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से अखमीरी रोटी की तैयारी से के समय में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उस बेतने में शमान कोड़ी के घर में है, कि पहले कोड़ी था लेकिन प्रभु ने उसको चंगाई दी थी, उसको जीवन दिया था, और आज वो आदर के साथ उस यीशु को अपने घर में उसने आमंत्रित किया है, और वहाँ पर एक स्त्री आती है जिसका नाम मरियम है, और किस प्रकार से मरियम प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करती है, और हमने इन बातों को ध्यान दिया था किस प्रकार से मरियम है उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसका डिवोशन किस प्रकार से, न केवल उसका डिवोशन है लेकिन किस प्रकार से उसका समर्पण है, उसका डेडिकेशन। पहली बात हमने डिवोशन देखा था, दूसरा हमने डेडिकेशन देखा था, समर्पण देखा था, और तीसरा डिक्लेरेशन किस प्रकार से वो घोषणा करती है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान होंगे। सो उन बातों को हमने बहुत ही ध्यान से देखा था, लेकिन हम धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैसे प्रभु के कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कि परमेश्वर के योजना में होकर किस प्रकार से प्रभु उस समय में आ पहुंच रहा है कि अपने उस दिए के उच्च कार्य को पूरा करे। चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा को बहुत ही सुंदर रीति से वर्णित करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं हम एक ही स्थल को लेते हैं, लेकिन उस सच्चाई के साथ और गहराई के साथ समझने के लिए अगर हम उस सुसमाचार को दूसरे पलटे तब हमें और विस्तार से उन सारी चीजों को देखने को मिलता है। मरकुस ने जो सुसमाचार लिखा है और यूहन्ना ने जो सुसमाचार लिखा है वो फर्क है। फर्क में से मतलब कुछ चीजें, मैं फर्क उस बात से कह रहा हूँ कि उनकी बातों में, उनके विचारों में, उनके सिद्धांत में फर्क है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मरकुस छू रहा है, लेकिन कुछ चीजें यूहन्ना ज्यादा छू रहा है। उसका कारण ये कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ था, मत्ती प्रभु यीशु मसीह के साथ था, और उन्होंने विस्तार से यीशु मसीह की सेवा को, यीशु मसीह के जीवन को देखा था, उनको सुना था, और इसलिए उनकी लेखनी में थोड़ा सा भिन्नता है। मरकुस जो लिख रहा है, और जब आप उसको देखेंगे लूका को और यूहन्ना को, तो देखेंगे कि बहुत सारी विस्तार के साथ वो लिख रहे हैं, लेकिन शायद मरकुस इतने विस्तार के साथ नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि मरकुस ने पत्रस से सुना है और पत्रस से सुनने के बाद तब उसने सुसमाचार को लिखा है। लूका ने भी बाद में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है और बाद में आकर के उसने परमेश्वर के वचन को लिखा है, पर हम मरकुस के सुसमाचार पर ध्यान दे रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था, उसके बाद हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह प्रोटी कोठरी में जाते हैं, और वहां पर फसह के मेमने का बलिदान का समय नजदीक आ रहा है, और ये अपने शिष्य के साथ अंतिम फसा करते हैं, और ये उनकी इच्छा थी कि मैं अपने शिष्य के साथ अंतिम फसा करूं। फसा के समय में प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को बोल रहे हैं, ना केवल वो अपने आप को दर्शा रहे हैं कि वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी, वो लहू है जो तुम्हारी बहाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो उन बातों का वर्णन करें किस प्रकार से सारी घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार से सारी घटनाएं घटित होंगी। और तब उसके बाद हम देखते हैं कैसे सारे चेले इधर उधर होते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु से बात करें तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम में से एक व्यक्ति होगा जो मुझे पकड़वाएगा, और वे आपस में चौंक रहे हैं, क्या मैं वो। मेरे प्रियो, ये प्रश्न आज भी है। पौलुस कहता है कितने हैं जो आज भी, जिन्होंने यीशु मसीह को पाया है, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। और इसलिए अच्छा है कि जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हम अपने आप को जांचें, क्या मैं वो तो नहीं हूँ कि मैंने यीशु को पाने के बाद भी आज भी मेरा जीवन इस प्रकार से कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाला हो, उसको पीड़ा दिलाने वाला हो। लेकिन जब आगे चलते हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा समय का ध्यान रखते हुए, और हर चीज को पूरा विस्तार से ले जाना थोड़ा कठिन होगा। 26 पद में भजन गाने के पश्चात वे जैतून पर्वत पर चले गए। भजन गाने के बाद वे जैतून पर्वत पर चले गए। आज का जो विषय स्थल है वो 27 पद से लेकर 72 पद तक है। 14 अध्याय में 72 वर्सेस है, 72 वर्स बहुत बड़ा है, लेकिन शायद हम जल्दी से जहां तक पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा, पर 72 पदों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पर जो स्थल मत्ती में पढ़ा गया था वो भी स्थल इन्हीं बातों का वर्णन कर रहा है। मती में जो बहन ने पढ़ा था वो स्थल भी इन्हीं सारी बातों का वर्णन कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए जो शब्द लिखा हुआ है भजन गाने के पश्चात, जब वे लोग मंदिर में आया करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे और उसके बाद जब आराधना में सहभागी होते थे तो वो भजन गाते थे। और बहुत सारे भजन है जो दाऊद ने लिखे हैं, भजन संहिता 113, भजन संहिता 14, 15, 16, 17, 18, ये वो भजन थे जो आराधना के बाद में गाया करते थे। और न केवल ये भजन गाते थे लेकिन उसके साथ साथ एक आशीष कब भी दी जाती थी। और वो आशीष अधिकतर मैंने पहले बताया था महायाजक जो गिनती की पुस्तक में है उसके 24:5-7 पद में वो आशीष वचन महायाजक इस आराधना के बाद में कहते थे। लेकिन 27 पद से लेकर के 31 पद तक पहले हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य के साथ बात कर रहे हैं और बात करते हुए कुछ बातों को कहना चाह रहे हैं। पहली बात, तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि ये लिखा है। तीन बातें हैं इस पद में और आगे चल के दूसरे पद में प्रभु यीशु मसीह, तीन बातें ये भविष्यवाणी है जो प्रभु के मुख से निकल रही है। क्रूस की यात्रा पर है, क्रूस की ओर बढ़ता चला जा रहा है, कदम उसके धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और लेकिन प्रभु किस प्रकार से उन बातों को बोल रहे हैं कि मेरे उस स्थान पर जाने से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। ना केवल इतना है लेकिन उसके बाद के बारे में एक बात को बता रहे हैं कि क्रूस पर मरने के बाद भी यहाँ पर वो संकेत कह रहे हैं मैं जी उठूंगा और मैं तुमसे क्या करूंगा। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मैं चरवाहों को, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि ये लिखा है। कहाँ लिखा है? जकरयाह उसका 13 अध्याय में, जकरयाह नबी के द्वारा वह भविष्यवाणी की गई है, जकरयाह उसका 13 अध्याय उसके 7 पद में कि ये लिखा है। क्या लिखा हुआ है? पहली बात, मैं चरवाहे को मारूंगा। कौन है सच्चा चरवाहा? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर की योजना है कि वो चरवाहा भेड़ों के लिए मारा जाए। परमेश्वर की योजना है कि ये चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे। परमेश्वर की योजना है कि ये चरवाहा भेड़ों के लिए कीमत चुकाए। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। कौन सी भेड़? उस समय उसके साथ जितने उसके शिष्य थे जो आसपास घूम रहे थे जिसके बारे में हम देखेंगे, वे तितर बितर हो जाएंगे, वे अलग हो जाएंगे और ऐसी होता है। लेकिन उसके बाद 28 पद में तीसरी बात, पहली बात चरवाहों को मारूंगा, दूसरी बात भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, तीसरी बात 28 पद में परंतु अपने जीवित होने के पश्चात मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा और गलील में मैं तुमसे मिलूंगा। ये वो भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह इस समय क्रूस के पास जाते जाते इस भविष्यवाणी कर रहे हैं और ये किस प्रकार से पूरी होगी प्रभु कह रहे हैं। और हम इस बात को देखते हैं ये तीनों चीज पूरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो चरवाहा मेरे और आपके लिए मारा गया है, भेड़े जो उसके शिष्य थे तितर बितर हो गए हैं ना के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले गलील में पहुंचे और उसके चेले गलील में उसको वहां मिलते हैं। मत्ती उसके 28वें अध्याय में हम उसका वर्णन पाते हैं। अब जब ये सब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे तब पतरस, हम जानते हैं पतरस के जीवन के बारे में, पतरस तीन मुख्य शिष्य थे जो प्रभु यीशु मसीह साथ रहते हैं, आगे हम देखेंगे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और पतरस थोड़ा उतावला था, बोलने में तेज था, ज्यादा था। एक समय पतरस ने प्रभु यीशु मसीह कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा तुम मुझसे क्या कहता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा कि मैं लोग मुझे मारेंगे, तो पतरस कहता है प्रभु ऐसा ना होने पाए। मत्ती उसके हम 16 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं, ऐसा ना हो। तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह डांट लगाते हैं और ये डांट लगाते हैं, कहते हैं पतरस ये बात तू नहीं बोला लेकिन तेरे अंदर शैतान वास कर रहा है, तेरे जीवन को किसी और चीज ने नियंत्रण कर रखा है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि हम अवतार में बहुत सारी बातें बोलते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा शिष्य है, समर्पित शिष्य है। यहाँ पर पतरस आगे होकर कुछ बोल रहा है। पतरस ने कहा चाहे सब छोड़ दें मैं नहीं छोड़ूंगा। तब यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही रात मुर्के दो बार बांग देने से पहले तू स्वयं तीन बार मेरा इनकार करेगा। परंतु पतरस दृढ़ता से यही कहता रहा चाहे मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े फिर भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। चाहे मेरे को तेरे साथ मरना भी पड़े फिर भी मैं इनकार नहीं करूंगा। कई बार हम इस बात को देखते हैं, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, हम बहुत बड़ी बड़ी गवाही देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है कई बार हम प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, इनकार कर देते हैं। ठीक पतरस का जीवन मेरा और आपका जीवन बन जाता है। क्यों? इस समय पतरस कैसे बोल रहा था? पतरस अपनी समझ का सहारा ले रहा था। पतरस अपने अपने स्वभाव में होकर के, अपने मानवीय स्वभाव में होकर वो बातें कहना चाह रहा था। वो परमेश्वर की बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था, जल्दीबाजी में उसने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था ऐसा होगा। तो तीन बातें प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में इन बातों कह रहा है। लेकिन जब हम 32 पद से आते हैं, इसमें थोड़ी देर रुकना चाहेंगे, 32 पद में, 32 से लेकर 42 पद तक। अब प्रभु यीशु मसीह वहां से गत्सेमनी बाग में जाते हैं। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना है, लेकिन जब 18 का आरंभ करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो 18 अध्याय का आरंभ करते हुए यूहन्ना बोलता है 18 अध्याय के पहले पद में। जब यीशु ये बातें कह चुका तो वो अपने चेलों को साथ लेकर किद्रोन नाले के पार गया जहां एक बाग था। अर्थात गत्सेमनी बाग में पहुंचने से पहले किद्रोन नाला था, और किद्रोन नाला खास तौर से बहुत ही विशेष बात को ध्यान में रखेगा, क्या परमेश्वर कर रहा, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की योजना किस प्रकार से उसके नियंत्रण में है। किद्रोन का नाला है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से निकल कर आ रहे हैं, ये नाला है, इस नाले को पार करके उसको जा करके उस गत्सेमनी बाग में जाना है। गत्सेमनी बाग एक जैतून का जो पर्वत है वहां पर पाया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह अधिकतर अपने शिष्यों के साथ जाया करते थे, और इसीलिए यहूदा उस स्थान को जानता भी था। लूका कहता है यहूदा उस स्थान को जानता भी था। और किद्रोन के नाले की बात की थी कि जब फसह का पर्व मनाया जाता था तो फसह के पर्व में बहुत सारे मेमने बलिदान होते थे, और उन सारे मेमने का लहू जो है बहकर उस किद्रोन के नाले में आता था और उस नाले में बहाता था। और ये नाले से, इस नाले से होकर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह किद्रोन के नाले को पार कर रहे हैं तो उसके पांव उस लहू में पड़ रहे हैं जो मेमने के लहू बहकर उसमें आ रहा है। मेरे प्रियो, एक मेमना, सच्चा मेमना प्रभु यीशु मसीह है, उसकी तैयारी है कि वो बलिदान हो, और तब उसके बाद वहां से पार होकर वो गत्सेमनी बाग में जाते हैं। गत्सेमनी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, गत होता है कुचला जाना, गत नाम का मतलब है कुचला जाना, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुचला गया। इसीलिए यशायाह 53 अध्याय में और उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए कुचला गया। जैतून पर्वत में वह जो था, वह जैतून की जो पत्तियां होती थी उनको ले करके कुचल करके और रस बनाया जाता था, और वो इत्र सुगंधित होता था जैतून के पर्वत में से लेकर के, और जैतून पर्वत इन सब चीज के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था। सो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उस नाले से पार होकर जाकर के ऐसे स्थान पर है जिस नाम का अर्थ है कुचला जाना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं कुचले जाने की तैयारी कर रहा है। वहां से उसकी तैयारी आरंभ हो गई है, गत्सेमनी बाग से जो प्रार्थना कर रहा है उसकी वो तैयारी शुरू हो गई है कि अब वो समय आ गया है कि मेरे और आपके लिए, संसार के सबके मनुष्य के लिए, पापों के लिए परमेश्वर पिता की योजना में होकर कुचला जाए, और उस कुचले जाने द्वारा वो जीवन प्रदान करे, वो लहू बहाए जिसका जो जीवन अनंत काल का जीवन है। मेरे प्रियो, कई बार हम बाइबल को बड़ा सरलता से पढ़ जाते हैं, लेकिन हम उन पदों पर ध्यान देते हैं, उन घटनाओं पर ध्यान देते हैं, उन शब्दों पर ध्यान देते हैं, उन परिस्थिति पर ध्यान देते हैं, वो हमारे हृदय को छू दे जाती है, और तब वो वेदना हमारे अंदर आती है। जब तक हमारे अंदर, मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने की वेदना ना आए, जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के दुख उतारने की पीड़ा को महसूस करें, तब तक हमारा विश्वास, हमारा जीवन ऐसी लड़खड़ाता हुआ रहता है। लेकिन हमें सचमुच में अपने जीवन में यीशु की वेदना पर विचार करना है, और इस स्थान पर वो जाकर अपने पिता से प्रार्थना करा। क्या हुआ यहाँ पर? कहता है नामक स्थान पर आए और उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा चेलों से? चेलों से कहा, तुम यहां बैठे रहो, तुम यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। वो तीन चेलों को लेकर गया है अपने साथ, आठ अलग हैं, अलग बारह में से एक चला गया है, यहूदा छोड़कर चला गया है जो फसह के पर्व में थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जिसको मैं मुंह में मैं रोटी दूं, समझ लेना कि वही है। और यहूदा उसी समय छोड़कर चला गया। अब 11 शिष्य बचे हैं, 11 शिष्य में से तीन शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उनको कह रहा है तुम बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। मेरे प्रिय, जो शब्द है, जो बैठे रहना का शब्द, एक बहुत ही गहरा शब्द है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ बैठना सीखे। आराम से इस बात को हम देखते हैं, हम बहुत सारे कार्य में व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता रहते हैं, लेकिन ये बैठकर परमेश्वर की आवाज को सुनना, बैठकर परमेश्वर के साथ सहभागिता करना, बैठकर परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा जब मार्था और मरियम प्रभु के सेवा कर रही थी, मार्था किस प्रकार से सेवा करने में व्यस्त थी, लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी। पिछले बार भी हमने मरियम को देखा था, और मरियम को तीन बार हम सुसमाचार में देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, और तीनों बार हम मरियम को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए देखते हैं। तीनों बार, चाहे वो लाजर का समय था, वो यीशु की सेवा करने का समय था बेतनी में, और तीसरे स्थान पर जब उसके ऊपर तेल डाला था। बैठना परमेश्वर के साथ सहभागिता को दर्शाता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा था कि मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना न जाएगा। मार्था परेशान थी, जरूर सेवा करी थी, और मार्था आगे कहती है, देख मेरी बहन मरियम तो कुछ नहीं कर रही है, मैं कार्य करते करते थक गई लेकिन बैठी। तब प्रभु ने कहा था उसने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कार्य ना कर, कार्य अलग जगह है, लेकिन इसके साथ साथ ही, और इसीलिए विश्वासी को ये प्रोत्साहित किया जाता है, ये सिखाया जाता है वचन के अनुसार, ये सिखाया जाता है कि मेरा और आपका जीवन इस तरह से होना चाहिए कि हमारे प्रतिदिन की आरंभ प्रभु के साथ हो सके, हम प्रभु के साथ उसके वचनों से आरंभ कर सके, हम प्रार्थना से आरंभ कर सके। इसीलिए कलीसिया में सिखाया जाता है कि हमें डिवोशन करना जरूरी है, प्रातःकालीन मनन करना जरूरी है। ये हमारी संगति को, सहभागिता को बहुत अधिक बढ़ाता है। हम व्यस्त, बहुत ज्यादा बातों में व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता मेरे प्रियो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। हम ऊपर ऊपर तो विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ बैठने वाले लोग नहीं है, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले लोग नहीं है, प्रभु की सहभागिता में रहने वाले लोग नहीं है, तो हम एक ऊपर ऊपर के विश्वासी बनकर रहते हैं। और मुझे और आपको सावधान रहना है कि क्या सचमुच में हमारा जीवन इस प्रकार से है। तब आगे जो क्यों कहता है, अब वो बैठे और जब तक मैं प्रार्थना कर, अब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक एक शब्द जो प्रभु के या प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से है, वो कह रहा है यहाँ पर तुम यहाँ बैठे रहो। जब 32 पद से हम आगे जाते हैं तो 32 पद से लेकर के हम 42 पद तक एक विशेष बात को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा को। प्रभु यीशु मसीह ने जो पीड़ा सही और उसके साथ जो व्यवहार हुआ, और तब उसके बाद हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार से उसके शिष्य 43 पद से लेकर 72 पद तक उसके शिष्य विश्वासघात करते हैं और यीशु का परित्याग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। किस प्रकार से क्या प्रार्थना कर रहा है, और उसने अपने साथ याकूब यूहन्ना को लिया और व्यथित और बहुत व्यथित और व्याकुल होने लगा बहुत अधिक। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी पीड़ा का आरंभ केवल क्रूस पर नहीं था, उसकी पीड़ा का आरंभ केवल उन लोगों के सामने था। प्रभु ने चाहा अगली बार अगले संडे को हम उन 6 ट्रायल्स को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को जिसका सामना करना पड़ा। इस बीच में से लेकर जब से वो पकड़ा गया है, पकड़े जाने के बाद से लेकर क्रूस पे जाने तक 6 ट्रायल्स हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह को सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या प्रार्थना करें, उनका जीवन किस प्रकार से, वो बहुत ही व्यथित थे, व्याकुल होने लगा, और उसने उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूं, यही ठहरो और जागते रहो। मेरा मन बहुत उदास है, सोचिए वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो सृष्टि करता, क्यों ये सारी चीज उसके जीवन में आ रही है, क्यों सारी चीजें, क्योंकि न केवल परमेश्वर है, प्रभु का प्रभु है, लेकिन वो पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य है। और पूर्ण मनुष्य होने के कारण वो मेरे और आपके समान थका, मेरे और आपके समान रोया, मेरे और आपके समान वो व्यथित हुआ, मेरे और आपके सामने उदास हुआ, मेरे और आपके सामने उसे भूख लगी, मनुष्य था। सो परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया प्रभु यीशु मसीह में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं पिता तक तुमको पहुंचा दूं। आपका जो परमेश्वर का संबंध था वो टूट गया था, और उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए वो बीच में खड़ा हो गया प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य बनकर खड़ा हो गया, वो मेमना बनकर खड़ा हो गया, ताकि वो उस पीड़ा को सहे, उस दुख को सहे जो पाप के कारण मुझ पर आप पर आ चुकी थी। पाप के कारण मुझ पर आप पर दंड आ चुका था, पाप और आपके कारण मुझ पर आप पर मृत्यु आ चुकी थी, पाप के कारण मुझ पर आपके परमेश्वर से अलगाव आ चुका था, वो सब कुछ हो चुका था। उस चीज को पूरा करने के लिए वो स्वयं मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर बीच में खड़ा हो गया, बीच में खड़ा हो गया। जो पीड़ा मुझे लेनी थी, जो व्याधि मुझे सहनी थी, जो उदासता पाप के कारण मुझे और आपको सहनी थी, वो उसने सह ली। और वो अब ये समय आ गया है कि वो सब कुछ उसके ऊपर लाद दिया जाए। मेरे प्रियो, वो पापी नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो मनुष्य बनकर उसने पाप को सह लिया। इब्रानियों का लेखक उसके बारे में वर्णन करता है, इब्रानियों का 5 अध्याय, 5 अध्याय के 7 पद से, बल्कि अगर मैं 5 पद से पढ़ता हूं तो अच्छा है। इब्रानियों 5 अध्याय 5 पद, इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं पर उसी ने दिया जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। इसी प्रकार वो एक अन्य स्थल पर कहता है, तू मिलके सदस्य की रीति पर युगानुग का याजक है। प्रभु यीशु मसीह युगानुग का याजक है, जिसको हम सबसे पहले उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में देखते हैं, 7 पद विशेष पद, अपनी देह के रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मसीह ने उससे किससे, परमेश्वर से, पिता से, उसको कौन, परमेश्वर पिता, जो मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहाकर प्रार्थनाएं और विनती की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीखा, वो सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। कैसे उद्धार का वो स्रोत बन गया, किस प्रकार से, इब्रानियों का लेखक कहता है वो उद्धार का स्रोत बन गया, लेकिन कैसे, उसने परमेश्वर के साथ सामने होकर विनती की, ना केवल विनती की। और जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार की वो विनती करता है, जब हम इसमें आते हैं मरकुस में, अपने शिष्य को तो जागने के लिए कह रहा है, बार बार कह रहा है 35 पद में, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि संभव हो तो ये घड़ी टल जाए। और वो कहने लगा, हे अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कर रहा है वो, एक मानव होकर, एक मनुष्य होकर, उसके लिए असंभव है इस पीड़ा को सहना, क्योंकि पूर्ण मनुष्य है। मानव होकर, मनुष्य होकर, उसके लिए इस वेदना को सहना असंभव है, कठिन है। वो कह रहा है, ये मेरे लिए जो मानव का सारे पाप का बोझ उस पर लाद दिया गया था, वो पापी नहीं था, लेकिन आज मेरे और आपके लिए इस स्थान पर पहुंच गया कि उस गस्समनी बाग में झुककर वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि धीरे 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 मानव का सारा बोझ उसके ऊपर लादा जा रहा है। और आप जानते हैं, लूका कहता है कि उसकी व्याधि इतनी बढ़ गई थी कि पसीना खून बन बन के बह रहा था। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के सोच लीजिए, जो मसीहत है ना, मसीहत मुझे और आपको ऐसे नहीं मिली, मुझे और आपको ऐसे नहीं, ऐसी कोई गुरु नहीं खड़ा हो गया, ऐसी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो गया जिसने कुछ शिक्षा दे दी, कुछ और कर दिया, ओ हम उसके पीछे चल करके ठीक है जैसे हुआ है वो भी, ऐसा नहीं। मेरे प्रिय, उसके उसका जीवन सबसे अलग रहा, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसने इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना क्लेश, इतनी यातना, इतना निंदा मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया था, उसने मुझे और आपको सृजा था। और जब मनुष्य पाप में गिरा था तो उसी समय उसके मुंह से शब्द निकले थे, जब अगर आप उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है, आदमावास से जब आया तो उसने कहा, हाय ये तूने क्या किया। उसकी वेदना उसी समय निकली, ये क्या किया कि तू इस पाप में गिर गए। और उस पाप की कीमत आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए चुकाने तैयार है। और इसलिए उसमें होकर वो इस वेदना को सह रहा है। वो कह रहा है, यदि तेरी इच्छा। फिर भी उसने सब कुछ को अपने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की अधीनता में रखा। इसीलिए फिलिपियों का लेखक प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसका दूसरा अध्याय 5 पद से पढ़ूंगा, अपने में वही स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, जिसने किसने, यीशु मसीह में, किसके स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर का पुत्र, जिसके लिए लिखा है उसने अपने पुत्र को दे दिया, परमेश्वर का पुत्र स्वरूप में होते हुए परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर मृत्यु की समानता में हो गया, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सहली। मनुष्य के रूप में होकर के यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु सहली। और इस समय मनुष्य के रूप में होकर पिता से कह रहा है, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा हो। मेरी इच्छा तो यह है ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, ये जो पीड़ा है, ये जो कष्ट है, पीड़ा और वेदना प्रभु यीशु मसीह की वो वेदना थी जो मेरे और आपके पाप के लिए थी। क्या कभी आपने विचार किया? क्या बैठकर विचार करते हुए आपके आंखों में आंसू आए? क्या आपने कुछ प्रतिशत भी उस वेदना को अपने दिल में लिया है? मेरे प्रियो, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के कार्य क्यों निहारते हैं, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान क्यों निहारते हैं, अधिकतर हम उन चीजों का वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, जरूर अनुग्रहकारी है, क्षमा करता अनुग्रह, लेकिन कैसे अनुग्रहकारी है, क्या अनुग्रहकारी है? अगर वो मेरे और आपके लिए पीड़ा ना सहता तो उसका अनुग्रह कहाँ होता? उसने मेरे और आपको इस स्थान पे खड़ा कर दिया। उसने कहा, ठीक है मेरे बेटे रॉली, तूने पाप किया है लेकिन तू यहाँ आराम, मैं तेरे लिए सारा उपाय कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए अपने आप को दे रहा हूँ, मैं तेरे लिए अपने आप को बलिदान कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए पीड़ा सहने के तैयार हूँ, मैं तेरे लिए मूल्य चुकाने देता हूँ ताकि तू इस पाप से छुटकारा पा जाए। ये उसने मेरे लिए साथ किया, ये उसने आपके साथ किया। क्या आपने उस बात पर विचार किया, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को? मसीहत हमें ऐसे ही नहीं, उसके लिए बहुत उन्हें कीमत चुकाई है। और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़कर वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये प्याला, तब और उसने आकर उन्हें सोते पाया, अपतस का शमान तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और परीक्षा में ना पड़ो। ये प्रार्थना कब सिखाई थी उसने? ये प्रार्थना सेवा के आरंभ में सिखाई थी, जब मत्ती उसके 6 अध्याय को देखते हैं, मरकुस मत देखते हैं, सुसमाचार उन वर्णन करता है जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। उसने कहा था कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में ना ला और बुराई से बचा। ये प्रार्थना उसने उस समय सिखाई थी। मेरे प्रियो, ये जो प्रार्थना थी शिष्य से कह रहा है वो नई प्रार्थना नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य को पहले सिखा चुका था और शिष्य उसके साथ थे और शिष्य ने उसको देखा था, जाना था, फिर भी वो भूल गए थे किस प्रकार से उनको अपने जीवन को परीक्षा से बचाना है। वो कहता है कि, कह रहा है कि प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। मेरे प्रियो, हमारा युद्ध जो है संसार के हथियारों से और इन सारी चीजों से नहीं है, हमारा युद्ध तो अंधकार की सेनाओं से है, जैसा इफिसियों उसके 6 अध्याय में पौलुस वर्णन करता है, हमारा युद्ध उनसे है। और ये युद्ध वही प्रभु यीशु मसीह लड़ रहे हैं, ये युद्ध वो लड़ रहे हैं जो कि जिसकी वो वेदना सह रहे हैं, मेरे और आपके लिए वो संघर्ष वो सह रहे हैं। लेकिन पतरस, याकूब से यौना जो 3 करीबी शिष्य थे, ये भी इस बात को नहीं समझ पाए थे। वो कह रहा है प्रार्थना करो, तब आगे चल के कहता है, और उसने फिर जाकर इन्हीं शब्दों से प्रार्थना की और उन्हें फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से बोझिल थी और वे नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। प्रभु यीशु मसीह पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं उनका दर्द क्या है, वो महसूस कर रहे हैं। बलिदान में जो बलिदान देंगे उसमें शिष्य भी शामिल थे, क्योंकि शिष्यों के लिए उसको बलिदान होना था, सबके लिए। लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे, यीशु के साथ रहते हुए, यीशु की बातों को सुनते हुए, यीशु ने कितनी बार कहा था शय के मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और परमेश्वर उसको ऐसा होने दे कि बलिदान किया जाए, मारा जाए, बार बार उसने कहा था, लेकिन वे समझ नहीं पाए थे। क्या कह रहा है, वो नींद से बोझिल थे। हमारा मसीह जीवन कैसा है, कितना अधिक जागृत रहने वाला है, या हमारा नींद, हमारी आंखें नींद से बोझिल हो जाती। और मेरे प्रियो, जब हमारे आंखें बंद होने लगती हैं तो हमारे कान भी बंद हो जाते हैं और उसके बाद हमें सुनाई नहीं देता। हमें सचेत रहना, मुझे और आपको सचेत रहना है। तब प्रभु का कहता है, फिर उसने तीसरी बार आकर उसे कहा, क्या तुम अब तक सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? मैं पीड़ा उठा रहा हूं, मैं दुख उठा रहा हूं, मैं वेदना सह रहा हूं, मेरा पसीना खून के समान बनकर बह रहा है और मेरे ये कप को उठाकर लेना पीना कठिन लग रहा है। मैं पिता से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी ये स्थिति है। और वो कहता है, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके, तुम एक घड़ी भी नहीं जा सके। कह रहे विश्राम करो, बहुत चुका, वो घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो यहां से चले, उठो यहां से। तुमको इसलिए लेकर आया था, मैं इसलिए बैठाया था ताकि तुम मेरे साथ प्रार्थना में साथ। शायद हो सकता है प्रभु प्रार्थना कर रहे हो, शिष्य के अंदर बोझ मिल रहा हो कि उसको देख करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम नहीं जानते क्या कुछ गुरु हमारा प्रार्थना करा है, लेकिन तू उसके मन को जानता है, तू उसकी वेदना को जानता है, तू सबको जानता है। हो सकता है उनको याद आ जाए कि गुरु ने ऐसा कहा था कि अवश्य मैं पकड़वा जाऊं, मारा जाऊं। कहीं प्रभु परमेश्वर पिता ऐसा तो नहीं कि समय आ गया हो कि वो पकड़वा जाए, मारा जाए, उसकी बातें पूरी होने। सब कुछ भूल चुके थे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन दिया है और ये वचन मुझे और आपको बार 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 उन बातों को, उन घटनाओं को याद दिलाता है, याद दिलाता है। शायद उनके पास कुछ ऐसी चीज लिखी हुई नहीं थी, लेकिन मैं और आप उनसे दो कदम और आगे, इसीलिए मेरा और आपका न्याय और अधिक रीति से होगा कि ताकि परमेश्वर न केवल पवित्र आत्मा को दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, वचन को। 43 पद से लेकर के एक और स्थल को मैं लूंगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने का समय आ गया। यहूदा उनके साथ रहता था। आप जानते हैं यहूदा के बारे में, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा चोर है, जब प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्यों अपने साथ 12 शिष्यों में शामिल किया, तब क्यों शामिल किया? मेरे प्रियो, दो बातें। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा उस योजना को पूरी करेगा जो परमेश्वर पिता ने बनाई। यहूदा यह व्यक्ति होगा जिसके द्वारा वो योजना पूरी की जाएगी जो मेरे पिता ने बनाई है, पिता उसको उपयोग करेगा। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने उसके बारे में कभी प्रभु यीशु मसीह नकारा नहीं। हाँ, एक बात जरूर है जो आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले कहा था भला होता कि उसका जन्म ना हुआ होता, भला होता। क्यों प्रभु कह रहा था भला होता? क्या भला होता उसका जन्म ना हुआ था? इसलिए कि अगर वो ना उसका जन्म होता तो परमेश्वर की योजना में यहूदा शामिल ना होता, तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं पकड़ाया जाता। नहीं, यहूदा की जगह कोई दूसरा होता। इसीलिए जब हम रोमन कैथोलिक के लोगों से बातचीत करते हैं, वो अक्सर मरियम को परमेश्वर के स्थान पर ले आते हैं, प्रभु यीशु से बड़ा बना देते हैं। मरियम प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं थी, मरियम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उपयोग किया। हो सकता था परमेश्वर की दृष्टि मरियम चुनी गई, अगर वो हो सकता कोई दूसरी स्त्री को चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर को चुनना था अपने वचन को पूरा करने के लिए, जो उत्पत्ति 3:15 में उसने स्त्री का शब्द लाया था। इसलिए यहूदा को उसने चुना था, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा भला होता कि इसका जन्म होता, वो प्रभु जानता था, परमेश्वर जानता था कि यहूदा का अंत क्या है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नरक में जाए। और परमेश्वर का सबसे ज्यादा वेदना यह थी कि यहूदा न केवल मुझे पकड़वाने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको आकर के जो पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है, वो सच्चा पश्चाताप नहीं। उसने पश्चाताप करके पैसों तो फेंक दिया, लेकिन प्रभु के चरणों में आकर उसने माफी नहीं मांगी। अगर वो पश्चाताप करके प्रभु के चरणों में आके क्षमा मांगता, यहूदा की कहानी कुछ होती। यहूदा पकड़वाया गया, ने पकड़वाया, लेकिन बाद में लिखा होता कि यहूदा को परमेश्वर ने किस रीति से मारा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का दुख यहूदा के लिए ये था कि ये पश्चाताप नहीं करेगा और नरक में जाएगा। उसके दिल में ये तो आया कि मैंने गलत किया, निर्दोष को पकड़ाया, उसने पैसा फेंक दिया, लेकिन उसे प्रभु के पास आकर नहीं क्षमा मांगी। और इसलिए मुझे और आपको, मेरे और आपके लिए जरूरी ये नहीं है कि हम किसी चीज के लिए कायल हो, लेकिन कायलता के साथ साथ हमें प्रभु के पास जा करके क्षमा मांगनी, उससे कहना है प्रभु मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, मैंने भूल की है, मैंने गलती की, मेरे अपराध को क्षमा की। और यही यहूदा ने नहीं किया, और इसीलिए प्रभु का दुख था। जो कहता भला हुआ होता कि उसका जन्म, वो नरक में जाने से बचा। उसको उस समय भी चिंता थी कि व्यक्ति नरक में न जाए। मेरे प्रिय, ये मुझे और आपको, तब आगे चल करके हम उसके देखते हैं। अब यहाँ पर यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकवाता है, लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं, लेकर आए हैं, और तब तक तो प्रभु कहता है कि क्यों तुम ये सब कुछ लेकर आए हो। और किस प्रकार से यहूदा झूम करके वो कहता है 44 पद में, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था कि जिससे मैं चूमू वो ही है, उसे पकड़कर सावधानी से ले जाना, पकड़कर सावधानी से ले जाना। उसको अभी ये डर था कि कहीं इसके शिष्य विरोध ना करते, बलवा ना करते। उसने यहूदा ने आश्चर्य कर्मों को देखा था, यहूदा को डर था कहीं प्रभु कोई ऐसा आश्चर्य कर्म करके बहुत सारे लोगों बुला करके हमें पराजित ना कर दे और हमसे छूट जाए। मेरे प्रियो, ये सब उसके विचार चल रहे थे अलग अलग। और उसने कहा इसको सावधानी से पकड़ना, भैया ध्यान रखना, अगर पकड़ रहे हो तो। तब 45 पद, वहां पहुंचकर उसने तुरंत उसके पास आकर उससे कहा रबी, और उसे चूमा। रबी संबोधन, यहूदा ने कभी भी यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु नहीं कहा, हमेशा उसने रबी कहकर उसको संबोधित। दूसरे शिष्य ने उसको प्रभु करके कहा, उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को रबी कहकर संबोधित किया। और तब कह रहा है, और तब उन्होंने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर पास खड़े लोगों में से एक ने तलवार खींच ली। दूसरे सुसमाचार वर्णन करते हैं, ये व्यक्ति कौन था, ये पतरस था जिसने उससे के उनके एक व्यक्ति के कान उड़ा दिया था। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तुम तलवार और लाठियों को लेकर मुझे बंदी बनाने के लिए आए हो? क्या मैं कोई डाकू हूं? मैं तुम्हारे साथ प्रतिदिन मंदिर में उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हो। ये तुम मुझे जो पकड़ रहे हो, ये तुम्हारी योजना नहीं है, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम जो इतने लोगों को लेकर आए हो, और उसके समूह में उस समय में उस फौज में कम से कम 600 लोग होते थे जो संख्या होती थी, और 600 लोगों को लेकर के यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए थे। सोच लीजिए, जो उनको भेजा गया था उनके हाकिमों ने, इसके बारे में थोड़ा सा अगले संडे भी हम विचार करेंगे। और तब यहाँ पर वो कहता है, ये पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। इस पर सब ने उसे त्याग दिया और छोड़कर चले गए। सब ने त्याग दिया, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई जो अभी हमने देखी थी, कोई पूरी, सब ने त्याग दिया और छोड़कर चले गए। एक नवयुवक उसके पीछे चल रहा था, वो अपने नंगे शरीर पर केवल मलमल की चादर ओढ़े था। उन्होंने उसे पकड़ा, परंतु वो मलमल की चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। संभवतः बाइबल के कुछ विद्वान इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उसने अंतिम फसा करी उपरोटी खोटी में, तो वो उपरोटी खोटी मरियम की थी। और उसी को हम प्रेरित काम उसके 12 अध्याय में देखते हैं, जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो भी वो बड़ी कोठरी थी, उपरौटी कोठी थी और वो भी मरियम की थी। और ये जो है मरकुस है, उसी मरियम का बेटा है जिसको यौना मरकुस कहा गया, उसी का पुत्र है। और इस मरकुस ने उस समय जब इसके घर में सब कुछ हो रहा था, ये वहां पर था, इस दिन सब कुछ को देखा था, संभवतः ये आराम कर रहा होगा, अलग रहा होगा, और उसने जैसी कुछ हलचल मची, भीड़ हुई, सब कुछ हुआ, ये उसने वही चादर लपेटी और चादर लपेट के उसने कहा देखो मैं क्या हो रहा है। और उस समय इसको जब भीड़ ने देखा, लिखा हुआ है एक नवे उसके पीछे चल रहा था, वो तमाशा देखने के लिए आया था और अपने नंगे शरीर में मलमल के कपड़े होता, और उन्होंने उसे पकड़ा। लेकिन जैसे उसको पकड़ा, अच्छा तू हमारे साथ चल, जैसे पकड़ा वो चादर छोड़कर भाग गया, चादर छोड़कर। ये वही मरकुस है जो सुसमाचार को लिखा है। ये मरकुस आगे चल करके हम प्रेरित काम में इसका वर्णन पाते हैं 13 अध्याय में। बर्नबास उसको अपने साथ सेवा में ले आता है और ये चला वापिस आ जाता है। तो उस समय पौलुस बर्नबास दोनों में आपस में कुछ खटपट होती है, पौलुस नाराज होता है। पर आगे चल करके यही मरकुस पत्रस के संपर्क में आता है और पत्रस के साथ रहकर ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके साथ एक शिष्यता को प्राप्त करके पत्रस का इतना क्लोज में आता है कि मरकुस का जो सुसमाचार लिखा है, पत्रस ने सारी घटनाओं का वर्णन किया और ये मरकुस का सुसमाचार मेरे आप तक पहुंचा। ये मरकुस की कहानी। सो वचन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से चलते चलते क्रूस पर जा रहा है। उसको चिंता लोगों की है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर करते हैं, ये परमेश्वर की दया है। और यहां तक कि जब उसका कान काटा गया तो प्रभु ने पत्रस को डांटा, उसने कहा जो तलवार चलाते हो तलवार से नाश हो, और उसने छू करके उस कान को भी उसने उसी समय ठीक किया। ये उसका वो आशीर्वाद, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो मृत्यु नहीं देता। उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आऊं। और मेरे प्रियो, मेरे और आपको जीवन देने के लिए पहले उसने स्वयं मृत्यु को प्राप्त करा है। सो हमने इन कुछ घटनाओं को देखा है जो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उस क्रूस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से उसने शिष्यों के लिए प्रार्थना करी है और किस प्रकार से अब उसको पकड़ा गया है। अब इसके बाद जो घटनाएं घटेंगी, तब हम देखेंगे उन 6 ट्रायल्स को, किस प्रकार से प्रभु को एक के बाद उन सारे ट्रायल्स का सामना करना पड़ा है। और परमेश्वर ने पुत्र की सहायता की है और वो कार्य वो पूरा कर सका, ये आज मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा जीवन को प्राप्त करें और उसकी आराधना आत्मा सच्चाई करें, न के लिए लेकिन एक आशा में होकर जीवन को व्यतीत करें कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएंगे और मेरे को और आपको अपने साथ। मसीह जीवन केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यस, हाँ, मृत्यु के बाद। और वो किसमें? प्रभु यीशु मसीह। और वो इसीलिए आया ताकि इस संसार के बाद भी मैं और आप जीवन में, ये आशा है जो प्रभु यीशु मसीह में और कहीं नहीं। मेरे प्रियो, सच मुझे एक दिन हो हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के उस क्लेश को, इस पीड़ा को थोड़ा मनन कर सके, विचार कर सके, उसके साथ बैठना सीख सके, उस पर उसके वचनों को पढ़ना सीख सके और देख सके कि मेरे और आपके लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, ताकि मैं और आप उसमें और अधिक बढ़ करके उसकी महिमा कर सके। आइए।